नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कैरल रोथ की पुस्तक यू विल ओन नथिंग एक समकालीन आर्थिक और राजनीतिक टिप्पणी है जो निजी स्वामित्व, धन निर्माण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बदलती संस्थागत शक्तियों के प्रभाव की पड़ताल करती है। निवेश बैंकिंग और उद्यमिता की पृष्ठभूमि वाली रोथ का केंद्रीय तर्क है कि बढ़ता सरकारी ऋण, मुद्रा विस्तार, विशाल निगमों का प्रभाव और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का नियंत्रण मिलकर आम लोगों की संपत्ति बनाने की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। पुस्तक का शीर्षक विश्व आर्थिक मंच से जुड़ी चर्चित पंक्ति को आधार बनाता है, लेकिन इसका दायरा केवल किराए और सदस्यता आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसमें डॉलर की क्रय शक्ति, केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्राएं, ESG, आवास, शिक्षा ऋण, डिजिटल अधिकार और विरासत नियोजन जैसे विषय शामिल हैं। रोथ इसे वित्तीय युद्ध के रूपक में प्रस्तुत करती हैं और पाठकों से संपत्ति, गोपनीयता तथा नागरिक भागीदारी को लेकर अधिक सतर्क होने को कहती हैं। पुस्तक की शैली स्पष्ट रूप से पक्षधर और चेतावनीपूर्ण है, इसलिए इसके दावों को तथ्य, अनुमान और वैचारिक व्याख्या के बीच भेद करते हुए पढ़ना उपयोगी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले स्वामित्व से पहुंच की ओर बदलाव का तर्क। पुस्तक का सबसे स्पष्ट विषय यह है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच तो मिलती रहती है, पर उनका स्थायी स्वामित्व घट सकता है। रोथ सदस्यता मॉडल, डिजिटल लाइसेंस और किराए की व्यवस्था को इस बदलाव के प्रमुख संकेत मानती है। किसी फिल्म, सॉफ्टवेयर, संगीत या डिजिटल सामग्री को खरीदने का अनुभव अक्सर वास्तविक स्वामित्व नहीं बल्कि सेवा देने वाली कंपनी की शर्तों पर निर्भर उपयोग अधिकार होता है। कंपनी शर्तें बदल सकती है, पहुंच रोक सकती है या उत्पाद को सेवा से हटा सकती है। लेखक इस ढांचे को आवास और वाहन जैसे बड़े क्षेत्रों तक फैलने की आशंका के रूप में देखती हैं, जहां ऊंची कीमतें, वित्त पोषण की सीमाएं और संस्थागत खरीद व्यक्तिगत खरीदारों को पीछे धकेल सकती हैं। तर्क का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पहुंच और स्वामित्व एक ही चीज नहीं है। पहुंच तत्काल सुविधा दे सकती है, लेकिन स्वामित्व व्यक्ति को नियंत्रण, पुनर्विक्रय का अधिकार, मूल्य वृद्धि का संभावित लाभ और संकट के समय विकल्प देता है। फिर भी पुस्तक की व्यापक निष्कर्ष श्रृंखला को सावधानी से पढ़ना चाहिए। हर सदस्यता सेवा या किराए का विकल्प शोषणकारी नहीं होता, क्योंकि कुछ स्थितियों में वह लागत और रखरखाव घटाता है। रोथ का उपयोगी प्रश्न यह है कि सुविधा के बदले व्यक्ति कौन से दीर्घकालिक अधिकार छोड़ रहा है। दूसरा, मुद्रा विस्तार, कर्ज और सिक्योरिटी क्रय शक्ति। रोथ अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था की चर्चा में सरकारी खर्च, बढ़ते सार्वजनिक कर्ज और केंद्रीय बैंक की नीतियों को निजी संपत्ति के लिए जोखिम के रूप में रखती है। उनका तर्क है कि जब मुद्रा की आपूर्ति तेजी से बढ़ती है और अर्थव्यवस्था भारी ऋण पर टिकी होती है, तब मुद्रास्फीति नकदी तथा निश्चित आय वाले लोगों की क्रय शक्ति को कम करती है। जिनके पास पहले से संपत्तियां हैं, वे कई बार कीमतों की वृद्धि से लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि वेतन और बचत पर निर्भर परिवार पीछे रह जाते हैं। पुस्तक इस असमान प्रभाव को वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के बीच धन के अंतर से जोड़ती है। रोथ ऐतिहासिक वित्तीय महाशक्तियों के उत्थान और पतन का संदर्भ देकर कहती है कि आरक्षित मुद्रा का दर्जा स्थायी नहीं होता। इस दृष्टि से डॉलर की भूमिका, ब्याज दरें और ऋण केवल विशेषज्ञों के विषय नहीं बल्कि रोजमर्रा की बचत, घर खरीदने की क्षमता और सेवानिवृत्ति सुरक्षा से जुड़े प्रश्न हैं। विश्लेषण का मजबूत बिंदु यह है कि यह पाठक को नाम मात्र की आय के बजाय वास्तविक क्रय शक्ति देखने को प्रेरित करता है। इसकी सीमा यह है कि मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंक नीति के कारण बहुस्तरीय होते हैं, इसलिए हर आर्थिक परिणाम को किसी एक संस्था की मंशा से समझना पर्याप्त नहीं है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश फिर भी स्पष्ट है, नकदी, ऋण और संपत्ति के जोखिमों को एक साथ समझना जरूरी है। तीसरा, केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा और डिजिटल अधिकारों की चिंता। पुस्तक का एक प्रमुख चेतावनीपूर्ण हिस्सा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, डिजिटल पहचान और बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्मों की शक्ति पर केंद्रित है। रोथ की चिंता यह है कि यदि भुगतान, पहचान और आर्थिक गतिविधि अत्यधिक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणालियों में जुड़ जाएं, तो राज्य या निजी मध्यस्थों के पास लेन देन को देखने, सीमित करने या शर्तों से बांधने की क्षमता बढ़ सकती है। वह बड़ी टेक कंपनियों को ऐसे प्रभावशाली ढांचों के रूप में देखती हैं जो संवाद, सूचना, डिजिटल सामग्री और बाजार तक पहुंच के नियम तय कर सकते हैं, लेखक के लिए मुद्दा केवल सुविधा या नवाचार नहीं बल्कि नियंत्रण और जवाबदेही का है। यदि किसी व्यक्ति की आय, भुगतान, संवाद और ऑनलाइन पहचान कुछ ही संस्थाओं के नियमों पर निर्भर हो तो गलती, नीति परिवर्तन या अनुचित दंड के विरुद्ध उसके विकल्प सीमित हो सकते हैं। इसीलिए पुस्तक निजता, अभिव्यक्ति और डिजिटल संपत्ति के अधिकारों को आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ती है। यहाँ उपयोगी विश्लेषण यह है कि तकनीकी डिजाइन तटस्थ नहीं होता, क्योंकि डेटा संग्रह, अनुमति और अपील की व्यवस्था शक्ति का वितरण तय करती है। हालांकि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के वास्तविक स्वरूप और सुरक्षा उपाय देशों के अनुसार अलग हो सकते हैं, अतः पुस्तक को किसी निश्चित भविष्यवाणी के बजाय पारदर्शिता, सीमित निगरानी, कानूनी सुरक्षा और स्वतंत्र समीक्षा की मांग के रूप में पढ़ना अधिक संतुलित है। चौथा, ESG, कॉरपोरेट शक्ति और पूंजी आवंटन की बहस। रॉथ ESG को केवल पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी मापदंडों का ढांचा नहीं मानती। वह तर्क देती हैं कि जब बड़े निवेशक और वित्तीय संस्थान कंपनियों को ESG मानकों के आधार पर पुरस्कृत या दंडित करते हैं, तब पूंजी आवंटन राजनीतिक तथा सामाजिक प्राथमिकताओं से प्रभावित हो सकता है। पुस्तक की चिंता यह है कि ऐसी रेटिंग प्रणालियां जवाबदेही के स्पष्ट लोकतांत्रिक ढांचे के बिना कंपनियों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष दबाव डाल सकती हैं। रॉथ इसे सामाजिक क्रेडिट जैसी व्यवस्था के संभावित कॉरपोरेट रूपक से जोड़ती हैं। हालांकि दोनों व्यवस्थाएं समान नहीं हैं और यह तुलना विवादास्पद है। पुस्तक का ठोस प्रश्न यह है कि निवेश निर्णयों में वित्तीय प्रतिफल, जोखिम और गैर वित्तीय लक्ष्यों के बीच संतुलन कौन तय करता है। यदि बैंक, परिसंपत्ति प्रबंधक या प्लेटफॉर्म कुछ क्षेत्रों को वित्त देना कठिन बनाते हैं तो उससे ऊर्जा कीमतों, रोजगार और छोटे उद्यमों पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर ESG समर्थक इसे दीर्घकालिक पर्यावरणीय और प्रशासनिक जोखिमों को मापने का प्रयास मानते हैं। इस विरोधाभास को समझना पुस्तक पढ़ने का महत्वपूर्ण लाभ है। रॉथ पाठक को किसी रेटिंग या नीति को स्वतः निष्पक्ष मानने के बजाय उसके मापदंड निर्णयकर्ता, पारदर्शिता और आर्थिक परिणामों की जांच करने को प्रेरित करती हैं। अंत में आवास, शिक्षा, ऋण और पीढ़ियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण। रॉथ के अनुसार निजी स्वामित्व पर दबाव का सबसे प्रत्यक्ष असर उन क्षेत्रों में दिखता है जिनसे मध्यम वर्ग परंपरागत रूप से संपत्ति बनाता रहा है, विशेषकर घर, शिक्षा और पारिवारिक विरासत। वह आवास बाजार में संस्थागत निवेशकों की बढ़ती भूमिका पर चिंता जताती हैं और कहती हैं कि जब पूंजी से संपन्न खरीदार बड़ी संख्या में घर खरीदते हैं तो सामान्य परिवारों के लिए स्वामित्व कठिन हो सकता है। घर को वह केवल रहने की जगह नहीं बल्कि दीर्घकालिक बचत और पीढ़ियों के बीच धन हस्तांतरण का साधन मानती हैं। शिक्षा ऋण पर पुस्तक का तर्क है कि महंगी उच्च शिक्षा और लंबे समय तक चलने वाला कर्ज युवाओं की बचत, उद्यमिता तथा घर खरीदने की क्षमता को बाधित कर सकता है। विरासत के संदर्भ में रॉथ कर नीति और संपत्ति नियोजन की महत्ता पर जोर देती हैं, क्योंकि संपत्ति का हस्तांतरण कानूनी दस्तावेजों, लाभार्थी नामांकन और कर नियमों से प्रभावित होता है। इन विषयों में पुस्तक की उपयोगिता उसके राजनीतिक निष्कर्षों से अलग भी है। यह बताती है कि संपत्ति निर्माण केवल निवेश प्रतिफल का प्रश्न नहीं है बल्कि आवास की उपलब्धता, ऋण की शर्तें, कानूनी तैयारी और परिवार की वित्तीय जानकारी पर भी निर्भर है। पाठक को यहाँ व्यापक दावों के साथ स्थानीय बाजार, व्यक्तिगत कर्ज क्षमता और योग्य कानूनी या वित्तीय सलाह को भी महत्व देना चाहिए। निष्कर्ष में, यू विल ओन नथिंग उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो मुद्रास्फीति, डिजिटल भुगतान, आवास की लागत, कॉरपोरेट प्रभाव और निजी संपत्ति के अधिकारों को एक ही व्यापक बहस में समझना चाहते हैं, विशेष रूप से छोटे व्यवसाय मालिकों, परिवार की वित्तीय योजना बनाने वालों, डिजिटल गोपनीयता में रुचि रखने वालों और सार्वजनिक नीति पर नजर रखने वाले पाठकों को इसमें विचारोत्तेजक प्रश्न मिलेंगे। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह स्वामित्व के कानूनी रूप, नकदी की क्रय शक्ति, ऋण, डिजिटल प्लेटफॉर्म की शर्तों और विरासत संबंधी तैयारियों को अधिक ध्यान से देखने की आदत विकसित कर सकती है। रॉथ विविधीकरण, मूर्त संपत्तियों पर विचार, दस्तावेजी तैयारी और स्थानीय नागरिक भागीदारी जैसे उपायों की ओर संकेत करती है। हालांकि किसी भी निवेश या कानूनी निर्णय को व्यक्तिगत परिस्थितियों और स्वतंत्र विशेषज्ञ सलाह के आधार पर लेना चाहिए। समान आर्थिक चेतावनी वाली पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह केंद्रीय बैंक, नीति, टेक्नोलॉजी, ESG और घर के स्वामित्व को अलग अलग मुद्दे नहीं मानती बल्कि उन्हें व्यक्तिगत स्वायत्तता से जोड़ती है। यही जुड़ाव इसे व्यापक और सुलभ बनाता है। साथ ही इसकी भाषा अक्सर अत्यंत आशंकापूर्ण और राजनीतिक रूप से स्पष्ट पक्षधर है। इसलिए यह पुस्तक अंतिम सत्य या निष्पक्ष नीति विश्लेषण के बजाय एक मजबूत तर्कपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में सबसे अच्छी तरह पढ़ी जाती है। सहमत और असहमत दोनों तरह के पाठकों के लिए इसका मूल्य इसके प्रश्नों की गंभीरता में है, न कि हर निष्कर्ष को बिना जांच स्वीकार करने में। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कैरल रॉथ, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।